नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। ये मंदिर निर्माण के पूर्ण होने तथा सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है।
आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र इस देश के डीएनए में है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सुबह अयोध्या में एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने सप्त मंदिर का दौरा किया और शेषावतार मंदिर में भी दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर की 350वें बलिदान दिवस समारोह में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर श्री मोदी एक विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। केंद्र सरकार गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस के सम्मान में वर्ष भर चलने वाले समारोह आयोजित कर रही है। प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र के नवनिर्मित पंचजन्य भवन का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए राजस्व संग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि राजस्व निधियां बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के व्हाट्सएप चैनल अकाउंट को फर्जी करार दिया है। प्रेस सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि व्हाट्सएप चैनल पर राष्ट्रपति का कोई आधिकारिक अकाउंट नहीं है। राष्ट्रपति के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक साझा करते हुए पीआईबी ने नागरिकों से ऐसे फर्जी अकाउंट से सावधान रहने का आग्रह किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि हाल के वर्षों में देश का पोत निर्माण क्षेत्र कई गुना बढ़ा है। नई दिल्ली में समुद्र उत्कर्ष संगोष्ठी में श्री सेठ ने समुद्र उत्कर्ष को एक महत्वपूर्ण समारोह बताया जो देश की पोत निर्माण क्षमता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि समुद्र उत्कर्ष लोगों को भारत की समृद्ध विरासत के बारे में बताता है और पोत निर्माण तथा मरम्मत में आधुनिक तकनीक और मजबूत राष्ट्रीय क्षमता के साथ इसके सामर्थ्य को दिखाता है। राष्ट्र कल संविधान दिवस मनाएगा। इस अवसर के पर एक विशेष समारोह आयोजित किया जा रहा है जिसका विषय है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। मुख्य समारोह नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी वी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और सांसद देश के पूर्वजों को याद करने और संवैधानिक मूल्यों के प्रति राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने युवा पीढ़ी से संविधान बनाने की प्रक्रिया और उसके बुनियादी सिद्धांतों को गहराई से समझने तथा भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में सक्रिय रूप से योगदान देने का आग्रह किया है। श्री बिरला आज जयपुर में एक विश्वविद्यालय में संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इथियोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने के कारण चेन्नई से मुंबई और मुंबई से होकर जाने वाली सभी उड़ानें आज रद्द कर दी गई हैं। इसके कारण एयर इंडिया और ब्रिटिश एयरवेज की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। लंदन से चेन्नई जाने वाली उड़ानें कम से कम 3 घंटे की देरी से चल रही हैं। गुवाहाटी में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 549 रन का लक्ष्य दिया है। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 27 रन बना लिए। भारत को जीत के लिए अभी भी 522 रनों की आवश्यकता है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 260 रन बनाए और अपनी पारी घोषित कर दी। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 और भारत ने पहली पारी में 201 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।